ओम शांति। तो सभी रोशन भाई जी का एक हाथ की ताली से पुनः स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई साहब आपका। आप लौकिक में मॉरिशियस से हैं, वहीं पर 1974 में आपको बाबा ज्ञान प्राप्त हुआ और वहां पर रहते हुए अपना बिजनेस करते हुए ईश्वरीय सेवाओं को आगे बढ़ाते रहे। आप कुमार जीवन जीते हुए बाबा की सेवाओं को वृद्धि करते हुए काफी समय वहां पर आपने ईश्वरीय सेवाएं की तन मन धन से, और वर्तमान में आप 21 वर्षों से मधुबन में समर्पित रूप से आर्ट गैलरी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम भाई साहब से सुनते हैं उनका लौकिक अलौकिक बहुत सुंदर जो अनुभव है वही सुनेंगे भाई साहब से। आदरणीय रोशन भाई जी, उनका सुनते हैं लौकिक अलौकिक अनुभव। और भाई साहब को आप देख रहे हैं ना, कितना एक्यूरेट अलर्ट लग रहे हैं। ये राजयोग का चमत्कार है, जो 75 एज होते हुए भी आप बिल्कुल यंग दिखते हैं। उनकी ऐसी दिनचर्या है जो एक्सरसाइज, डाइट और योग वगैरह सबको मैं अपने जीवन में अप्लाई करते हुए अपनी दिनचर्या को और अपनी हेल्थ को सबको मेंटेन कर करके चलते हैं। अभी हम सुनते हैं आदरणीय रोशन भाई साहब से उनका लौकिक अलौकिक अनुभव। ओम शांति।
ओम शांति। अभी आपने सुना था कि हम 21 सालों से हम मधुबन में पधारे, आप सभी मधुबन में आए, मधुबन में आए सभी नहीं, मधुबन में कोई आता नहीं, बुलाया जाता है, किसी ने आपको याद किया, ऐसा लगता है, फील होता है किसी ने हमको याद करके कुछ बहाने मधुबन में लाया गया, हम आए नहीं, कोई नहीं आता इधर। तो मधुबन पहले जब हम भक्ति करते थे हमको मालूम नहीं था, सिर्फ कहने मात्र ब्रह्मा विष्णु शंकर का कनेक्शन मालूम नहीं था। जब इधर आए बाबा ने बताया कि मधुबन का की जगह कौन सी जगह है जहां शिव को उड़ा दिया, त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव जो मेन है उसको जब बाबा इधर लाया बताया कि बच्चे यही जगह है मधुबन, कौन सी जगह जहां शिव ने ब्रह्मा को बिठाया उसको शिक्षा दी, कौन सी शिक्षा दी, विष्णु बनने की शिक्षा है। लेकिन उसको बोला कि विष्णु बनने से पहले एक शर्त है, कौन सा शर्त, तेरे को शंकर बनना है, तपस्वी मूरत भस्मी भूत राजयोग की अग्नि, योग अग्नि से तेरे को, देखो कितना सुंदर कनेक्शन, यही मधुबन जहां शिव ने ब्रह्मा को बिठाया और उसको शिक्षा दी विष्णु बनने के लिए। लेकिन विष्णु बनने से पहले क्या बनना है, उसको शंकर बनना है, है? और बाबा ने इस धरती को मधुबन को अनेक नामों से सजाया। पहले क्या बोला, ये धरती जो है वरदान भूमि बोला नहीं, तो आप सभी जो आए ऐसा महसूस होता है कि भले जर हो चैतन्य हो हर एक चीज हर एक व्यक्ति इधर आपको एक वरदान देना चाहते हैं। ये धरती है, हर एक फूल हर एक पत्ता हर एक भाई बहन आपको, क्योंकि बाबा ने बताया कि हर एक ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियों के दिलों से यही एक आवाज गूंजती रहती है, कौन सी आवाज, सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, सभी शांत रहे और सभी भगवान का प्यार, भगवान के शक्तियों को, भगवान के गुणों का अनुभव करते रहे। हमारे सभी इधर भाई बहनों के दिलों के यही निकलता, इसीलिए उसको इस जगह को वरदानी भूमि कहता। दूसरा सुंदर नाम बाबा ने बताया कि ये परिवर्तन भूमि है। कौन सी भूमि? परिवर्तन भूमि। दुनिया में किसी को कौन से एक व्यक्ति होएगा जिनको परिवर्तन नहीं चाहते हैं या नहीं? सभी को परिवर्तन चाहिए अपने जीवन में। लेकिन दुनिया के परिवर्तन और भगवान के परिवर्तन में कितना फर्क। दुनिया वाले सोचते हैं कि अगर ये नए कार लाएं, चेंज हो जाएं, परिवर्तन, मेरे को खुशी होंगे, नए अपार्टमेंट हो, नए फ्लैट, नए जॉब हो, नए फ्रेंड्स हो, रहने के अलग से एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट हो, सब ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए दुनिया वालों को। लेकिन इस परिवर्तन, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में दुनिया वाले ये भूल गए आंतरिक, अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन को भूल गए। उसने सोचा कि बाहर एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन से उसको सब प्राप्तियां मिल जाएंगे। लेकिन जब बाबा हम लोगों को इधर लाए, क्या बताया? बच्चे, ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अंदर से होता है, ना कि बाहर। और हम लोगों, हम सभी जो आए बाबा के पास, भले मधुबन में हो या बाहर में हो, सभी ने इतना अनुभव तो किया हुआ होगा बाबा की जादूगरी हर एक आत्मा के ऊपर। कौन कौन से परिवर्तन बाबा ने लाया एक एक आत्माओं के अंदर। ये मन बुद्धि जो है दूसरा नहीं है, हमारे मन, हमारे बुद्धि सेम है, ज्ञान आने से पहले और आज भी सेम है। लेकिन किस प्रकार के संकल्पों से हम अपने आप को बहलाते थे, पहले खुश होते थे, और आज किस प्रकार के संकल्पों से हम अपने आप को बहलाते हैं। आंखें तो सेम है, आंखें तो बदली नहीं, लेकिन ज्ञान आने से पहले, बाबा के पास आने से पहले कौन सी चीजों से हम अपने आंखों को बहलाते थे, पसंद करते थे देखने, और आज कौन सी चीजें भाता है, जजता है अपनी आंखों से। फिर मुंह बदले नहीं है, हमारी भाषा, बोलने का तरीका, किस प्रकार के थे पहले और आज, हमारे कान जो है सेम कान है, कौन सी चीज पसंद करते थे पहले सुनना और आज, यही हाथ किस प्रकार के कर्म। तो ये जादूगरी किसने किया, ये जो परिवर्तन, जब बाबा बोलते हैं ना, पहले हम समझते थे बाहरी चीजें, जब लाएंगे करेंगे तब हम सुखी रहेंगे खुश रहेंगे, ये सब करने के बावजूद भी बोलते हैं उसको द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन की कला है। पहले हम जैसे, हमको जैसे कि हम लोगों को जैसे कि किसी ने ठेकेदार बनाया था, कौन सी बात, दूसरों को परिवर्तन करने के लिए। बाबा ने ये ठेका, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन दूसरों को परिवर्तन करने के लिए। किसको परिवर्तन, स्व परिवर्तन। पहले हम समझते थे कि जब विश्व परिवर्तन होएगा तब स्व का परिवर्तन, बाबा ने बोला नहीं, ये स्व का परिवर्तन ही विश्व का परिवर्तन। तो ये चेंज जो है बाहर के परिवर्तन करते करते परिवर्तन की कला के बदले के बजाय कौन सी कला उत्पन्न हुआ मनुष्यों में, द आर्ट ऑफ सफरिंग है, दुखी होने की कला। आज देखेंगे दुनिया में जो धनवान है वो ग्रीड की रेस में और इनकम टैक्स की वजह से दुखी है, जो गरीब है वो अपने गरीबी की वजह से दुखी है, जो शादीशुदा है वो एक दो से दुखी है, जो सिंगल है वो अपने अकेलेपन से दुखी है, तो ये बाबा आकर के इधर हम लोगों को बताया कि अकेलेपन का दो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन। इंग्लिश में बोलते हैं एक लोनलीनेस और दूसरा शब्द होता है सॉलिट्यूड। लोनलीनेस जो है हैज बीन डिफाइंड described as the dark side of being alone। अकेलेपन का जैसे कि अंधकार स्थिति, और एकांत, प्रिय एकांतवासी एकांत, has been described as the glory of being alone। कितना फर्क हो, एक होता है अकेलेपन का की रोशनी प्रकाश दिलवाने वाले, और दूसरा होता है लोनलीनेस द डार्क साइड अंधकार। और बाबा ने बोला कि चाहे एक भीड़ भाड़ में क्यों न हो आत्मा, लेकिन उसके अंदर अगर शांत स्थिति का अनुभव कर रहा है भले एक क्रिकेट मैच के बीच में हो, लेकिन उस आत्मा को कह सकते हैं कि वो एकांत में है। और दूसरी तरफ पहाड़ों के गुफाओं में बैठे अकेला, लेकिन उसके मन चित्त अशांत है, स्थूल रीति से देख रहे हैं कि अकेला, लेकिन वो एकांत का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने ये परिवर्तन कितना मेहनत करके हम लोगों के पीछे बैठ करके ये जादूगरी, यही मन, यही आंखें, यही मुंह, यही कान, यही हाथ, लेकिन परिवर्तन लाया। नहीं तो परिवर्तन लाने के लिए क्या चाहिए? सीखने की कला है। दादी जानकी हमेशा बोलते थे, और सीखने की कला को उत्पन्न कर डेवलप करने के लिए क्या चीज चाहिए? नम्र चित्त, संस्कार स्वभाव, ह्यूमिलिटी। इसीलिए दादी जानकी क्या बोलते थे हमेशा, झुक झुक मर मर सीख सीख। जब तक झुकेंगे नहीं, खुद को मारेंगे नहीं, मरने का मतलब जीते जी, झुक झुक, तब तक सीख नहीं हो सकेगा। झुक झुक मर मर सीख सीख। तो फिर जिन्होंने ये बुद्धि रूपी दरवाजा खिड़की खुला रखा, तो वो कुछ भी हो जाए वो सीखते जाएंगे। और जो सीखते जाते हैं उनके जीवन कैसे होता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। कभी नहीं बोला कि टीचर्स लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, है स्टूडेंट लाइफ इज। जो सीखते जाते हैं उनका जीवन सुखमय, खुशहाल जीवन का अनुभव करते रहेंगे। जिनका ये दरवाजा खुला रहता है सीखने की, जिनके अंदर ये सीखने की कला डेवलप किया हुआ है, हर एक परिस्थिति, हर एक व्यक्ति के सामने जाते आते, हर चीज हर घड़ी सीखते जाएंगे। कभी कभी हमको मालूम है सभी कि कौन सी परिस्थिति हमको ज्यादा सीखने को मिलता है, अच्छी परिस्थितियों में या बुरी परिस्थितियों में। बुरी परिस्थितियों में ज्यादा शिक्षाएं मिलती है सीखने के लिए। तो फिर बाबा ने भगवान के ज्ञान, भगवान को समझने के लिए ये कला, सीखने की कला। नहीं तो हर एक ब्राह्मण देखा जाए, अभी क्या और सीखना है, जितना ज्ञान है सभी ब्राह्मणों ने, क्या मालूम था कि एक दिन बुद्धि रूपी गागर में पूरा सागर आकर के बैठ जाएगा। भगवान ने सब कुछ बरसाया हम लोगों के ऊपर, अपना ज्ञान, अपने सुख, अपने शांति, अपने खुशी, बाकी क्या रह गया अभी सीखने के लिए। ज्ञान सुनने के लिए. हम सभी ज्ञानी तो आत्मा हैं, नॉलेजफुल सोल्स हैं, है? और कुछ बाकी रह गया सीखने के लिए, पढ़ने के लिए. बाबा ने बोला हाँ, इतना ज्ञान पाने के बावजूद भी बाबा ने बोला जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है. क्यों? अगर हम एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएंगे कि अरे और क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, क्या हो जाएगा? भगवान को समझने के बजाय हम भगवान को समझाने लग पड़ेंगे. ये चेक करना बहुत जरूरी है. जिस रोज हमारी पढ़ाई पूरी हो गए तो क्या हो जाएगा? भगवान को भी समझाना शुरू करेंगे. भगवान जी आप बोलते हैं ऐसा है ऐसा है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता. भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, भगवान को भी शिक्षा देने लग पड़ेंगे. जिस रोज हमारी पढ़ाई, समझ गए ना, तो बहुत सारी बातें हैं. थोड़े समय के लिए एक दो बात जो खुद हमको आगे इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत अच्छा मौका दिया बाबा के और करीब नज़दीक आने का मौका मिला. कौन सी एक दो बातें हैं जो हम बहुत बहुत सावधानी दे करके बहुत बहुत बाबा की प्राप्तियों का अनुभव कराया बाबा ने. जो जहरीले चीजें हैं ब्राह्मण जीवन में, दो तीन बातें ऐसी हैं अगर आप ध्यान देंगे तो आप बहुत बहुत जल्दी बाबा के नज़दीक पहुंचते जाएंगे. कौन सी बात? पहली बात, आज जब दिल की बीमारियों का इलाज करने जाते, करने से पहले क्या करते हैं? ECG करते हैं, नहीं सुना नहीं सभी? ECG. तो इधर बाबा ने बोला अगर CCG करते हैं तो ECG करने की जरूरत नहीं. कौन सी पहली चीज? पहला जहर अगर कोने में रखेंगे, निकालेंगे, पहली चीज क्रिटिसाइज. सी दूसरी बात है कंप्लेन. तीसरी बात है कंपेयर, तुलना, आलोचना, शिकायत, तुलना. और चौथा झरमुई झंगमुई गॉसिप करना. ये चार जहर है. आपको भगवान के पास, भगवान के नज़दीक पहुंचने में बहुत बहुत और ही दूर ले जाएगा. और बातें ज्ञान आने से पहले, पहली चीज इम्प्रेस करने की, दूसरों को अपने सब कुछ प्रभावित करने की, इन्फ्लुएंस करने का, ट्राई टू कन्वर्ट. ये सब बातें इधर नहीं चलता है, इधर नहीं चलता. वही है ना। तो फिर अगर इन सब बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो आपका जीवन जो है खुद को अनुभव करेंगे कि हाँ अभी सही रास्ते पर चल रहे हैं। नहीं तो दुनियावी बातों में एक नहीं अनेक बाधाएं आ सकते हैं, क्योंकि दूसरों को अंगुली दिखाना सबसे आसान चीज है। बाबा ने बताया जीसस क्राइस्ट ने बोला था एक सुंदर बात कि बोलते हैं कि आसान है, सबसे आसान है 12 बजे दिन में अभी आसमान में सितारे को देखना आसान है कि एक आदमी खुद के कमजोरी खामियों को देखना, अपने अवगुणों को एक आदमी देखना, और इससे ज्यादा आसान है 12 बजे दिन में आसमान में सितारे देखना, यह आसान है, जबकि इधर सबसे मुश्किल बात खुद के अवगुणों को। तो बाबा के परिवर्तन, बाबा यही फर्क होता है दुनिया वालों के प्यार में और भगवान के प्यार में। कौन सा फर्क? जब हम आए थे इधर उन्होंने देखा, बाबा ने बोला बच्चे पहले जो हूं जैसा हूं भगवान ने मैं ऐसा किया, मुझसे पहले स्वीकार किया, फिर उसके प्यार की शक्ति ने हमको परिवर्तन किया। जबकि दुनिया वाले क्या बोलते हैं, पहले परिवर्तन लाओ फिर मैं प्यार करूंगा फिर मैं स्वीकार करूंगा। कुछ फर्क हुआ भगवान के प्यार में और दुनिया वालों के प्यार? जो था जैसा था भगवान ने हमको स्वीकार किया, और उसके प्यार ने हमको परिवर्तन लाया। सिर्फ 5 मिनट रह गया, अगर कोई पूछना चाहेंगे तो मधुबन सभी आए, बहुत अच्छा। मधुबन कहाँ होता है? मधुबन आबू में होता है, नहीं? आबू का मतलब ABU है, ए का मतलब जहां अल्लाह ने या अब्बा माना बाप, बी ब्रह्मा द्वारा क्या यू यूनिवर्सिटी खोला है, क्या बोलते हैं, जहां अल्लाह ने ब्रह्मा द्वारा यूनिवर्सिटी खोला, ठीक है, उसको बोलते हैं आबू। ठीक है, तो बाबा ने बोला हम ब्राह्मणों के लिए जब कोई बोलते हैं कि मधुबन में जा रहा हूं, बाबा ने क्या बोला, जहां एक ब्रह्मा कुमार या कुमारी पांव रखते हैं उस जगह क्या बन जाते हैं, मधुबन बन जाते हैं। तो हम बीके भाई बहनों से पूछ रहा हूं, तो कहां से आए और कहां तक आए, और जाने का समय जब आएगा कहां से कहां तक जाएगा, मधुबन से आए मधुबन में और मधुबन से वापस कहां जा रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं। जब हम आए थे इधर इस जन्म में बहुत बहुत भगवान को ढूंढा, बहुत भटके रास्ते पर, जो भी पत्थर मिलता था तमेव माता पिता, जब तप दान पुण्य कीर्तन भजन हवन गंगा स्नान तीर्थ यात्रा वेद शास्त्र पढ़ना व्रत रखना सब इस जन्म में किया, लेकिन अंदर रोज भगवान के साथ लड़ाई झगड़ा, अंदर तृप्त नहीं हुई थी आत्मा, खालीपन का अनुभव इतना करने के बावजूद भी है, और रोज भगवान के साथ लड़ाई। अगर तू है कहीं पर मेरे को सुन रहे हैं देख रहे हैं, इसी जन्म में मेरे को मालूम होना चाहिए तू क्या है क्या नहीं है कहाँ है कहीं सब। जब 75 में बहने उधर हमारे देश में आया सेंटर खोला, तो हम पहले स्टूडेंट हैं, चटाई पर बैठ के हमारे कोर्स शुरू किया। उस समय हम इतना अहंकार, शिव भक्त थे, शिव पुराण पढ़े और 24 घंटे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय माला कोने में रखते थे, और अंदर अपने आप जो जिसको बोलते हैं अजापा जाप आवाज अपने आप निकलते। तो इतना अहंकार, मैं बोला जब सुना कि बहने आई अच्छा ज्ञान, मैंने बोला क्या कौन सा ज्ञान, अगर ये बहने भगवान के बारे में जानना चाहते हैं मेरे पास आओ है? अगर भगवान की नजर किसी के ऊपर पड़ रहे हैं तो मैं हूं, इतना अहंकार। तो जब गए तो बैठे, बोला कि आप कौन, अपना नाम दिया, बोला कि नहीं नहीं ये नहीं आप। फिर अपना पिताजी का नाम बोला, नहीं नहीं ये परिवार का नाम लिया, कहाँ रहता हूँ कहाँ ये, बोला कि नहीं नहीं ये सब नहीं आप। मैं अंदर इतना गुस्सा, लेकिन मैंने बोला अंदर ही खुद के साथ मैंने बोला अगर तू मेरे से ज़्यादा जानते हैं तो क्यों नहीं बोल रहे। फिर मेरे को थोड़ा शांत किया, बोला कि बोलो मेरे साथ। मैं बोला मैं मेरा घर कितने चीज हुए, मैं दो चीज, बहुत अच्छा। बोलो मैं मेरी गाड़ी कितने चीज, दो चीज। बोलो मैं बोला मैं मेरी कुर्सी कितने चीज, बोला दो चीज। कुर्सी तो कुर्सी है, घर तो घर है, गाड़ी तो गाड़ी है, मैं तो मैं। अच्छा बोलो मैं, मैंने बोला मैं मेरा शरीर। बात पूरी उसी समय ये एटॉमिक बॉम्ब जापान में नहीं फटे थे इधर, उसी समय तुरंत उसको और बोलने की जरूरत नहीं, इतना अहंकार कि ये मैं ये जानता जीरो। उसी समय ये अनुभव हुआ कि जीरो माइनस, जो भी भगवान के नाम जो भी पढ़े ये सब 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 पानी, कुछ नहीं, क्योंकि मैं और तो यही पूछ रही थी मैं आप। तो बोला कि द डाउनफॉल ऑफ द ह्यूमन रेस, मनुष्य आत्मा के जो गिरावट का ये यही एक कारण है, क्या द मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल्फ। कितना कितना खतरनाक, जब मैं अपने आप को घर समझने लगे, मैं कोई पूछे आपका नाम क्या है शुभ नाम, मैं बोला टोयोटा मारुति होंडा, गाड़ी समझने लगे, कुर्सी समझने, शरीर समझ। भगवान ने मेरे से बहुत अच्छा सुंदर खेल, जब भगवान बाबा का परिचय तो बोला मेरे को, बच्चे मेरे पास मुंह नहीं है, तुम्हारे प्रसाद खाने के लिए, मेरे पास आंखें नहीं है तुम्हारे सुंदर फूल है सुंदर धूप अरे ए, ए, दीवा देखने के लिए, मेरे पास कान नहीं है तुम्हारे सुंदर भजन कीर्तन सुनने के, मेरे पास नाक नहीं है तुम्हारे धूप अगरबत्ती सुनने के। मैं इतना निराश, मुझे इतने सारे खर्चे भगवान सब सब मिट्टी में फिर भगवान मेरे को शान करे। बच्चे ये प्रसाद स्वीकार करता हूं जब आप मेरे बच्चे आत्मा, क्योंकि प्रसाद ज्यादातर समय क्या डालते हैं, जितना मीठा बनाएंगे उतना भगवान खुश। जब आप मेरे बच्चे आत्मा, आपके अंदर इतना मधुरता है, आपके एक एक बोल किसी के चेहरे के ऊपर फिर से मुस्कुराहट वापस लाने वाले बोल, किसी के चेहरे के आंसू पहुंचने वाले बोल, ये प्रसाद स्वीकार, चैतन्य प्रसाद। जब आप मेरे बच्चे जब आप सुंदर फूल खुशबूदार आकर्षित हमारे संग के रंग के फूल चैतन्य फूल ये स्वीकार, हमारे अगरबत्ती जब आप पवित्रता की खुशबू पूरे विश्व में फैलाने वाली आत्मा, ये धूप अगरबत्ती स्वीकार होंगे ना। तो फिर आज हमेशा बाबा के साथ रू रिहान, दोस्त के साथ, दोस्त के जैसे। बाबा, किसी ने पूछा एक बारी, आपका आध्यात्मिक जीवन सबसे बड़ी प्राप्ति कौन सी चीज? मैं हमेशा बाबा अभी तक बोला कि बाबा आपके सिंहासन, आपके मुकुट, आपके ताज सब दूसरे बच्चों के लिए रखना, मैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जो भक्ति और ज्ञान का राज का जो खजाना बाबा ने मेरे लिए खुलवाया, इसके भेंट में सत्युगी स्वराज के मेरे को नहीं चाहिए। सब मेरे लिए अभी जो प्राप्ति, मेरे लिए इधर ही अभी स्वर्ग है। समझ गए ना? तो फिर ओम शांति जी, धन्यवाद।